श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए वचन की संगति में कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आप अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए हम इस अध्ययन को आरंभ करने से पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं उसे समझ सकें, सीख सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के छल प्रपंच से आप हमारी रक्षा करें, ताकि प्रभु जी हम आप में बलवंत होकर आपके नाम को धन्य कह सकें। इस समय हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भजन संहिता 29 से अपने अध्ययन को आरंभ करें। इसका विषय है यहोवा की वाणी गर्जन है। यह भजन प्रकृति का भजन है, परंतु यह प्रकृति का पहला भजन नहीं है। हम भजन संहिता 8 में पढ़ चुके हैं, यह भी प्रकृति का भजन है। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागणों को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ। इसके बाद भजन संहिता 19 में है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला का प्रदर्शन कर रहा है। इसके बाद वह सूर्य की तुलना घर से निकलते वर्षे करता है और यह दिन का भजन है। अब हम आंधी के भजन को देखेंगे। इस भजन में आंधी का अंधकार, गर्जन की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना तथा चारों ओर भय का वातावरण है। मुझे बवंडर की एक घटना स्मरण आती है। एक घर में कुछ लोग पार्टी मना रहे थे और संभवतः नशे में डूब गए थे। उसी समय भयानक बवंडर आया और निश्चय ही वे उसके संहार हो गए और मारे गए। अंततः जीवन में प्रवेश करने की यह कैसी विधि है। काश वे पार्टी की अपेक्षा भजन संहिता 29 पढ़ते। मेरे मित्रों, यदि आप आंधी में फंसे हैं तो शराब से साहस बंधाने की अपेक्षा मेरा सुझाव है कि आप इस अनुपम भजन को पढ़ें। आंधी आने पर इसमें उसके लिए संदेश है। इस भजन की रचना बड़ी ध्यान आकर्षक है। यह सर्वोच्च स्तर की इब्रानी कविता है। इस भजन के बारे में इवाल्ड ने कहा, यह भजन ऐसे क्रम में सुसज्जित है जिसकी तुलना में इब्रानी का अन्य कोई उदाहरण नहीं है। डलिटस ने कहा कि यह 7 गर्जनों का भजन है। इसके बारे में पारोने ने कहा, यह भजन आंधी तूफान का एक अति उत्तम वर्णन है। उत्तर से दक्षिण तक उसका गमन, उसके द्वारा भय और विनाश, गर्जन, बिजली की चमक, यहाँ तक कि उसकी भीषणता और शांति आदि का इसमें सजीव चित्रण है। अतः भजन संहिता 29 इब्रानी कविता में आंधी का वर्णन है। इब्रानी कविता में ताल नहीं होती है। हम तो कविता में ताल ही को देखते हैं, परंतु हम वाक्यों के अंत में एक ही आवाज के शब्द को देखना चाहते हैं। जैसे भारत देश, मेरा देश, ऋषियों मुनियों वाला देश, परंतु इब्रानी कविता में तुलना की जाती है, अर्थात एक ही विचार को भिन्न रूप से दोहराना और उसे प्रायः विकसित करना है। यह भजन एक आंधी की स्वतंत्रता और उसके वैभव में आगे बढ़ता है। इसमें एक छोटी विजय, एक महिमामय स्वच्छंदता, एक साहसी बड़प्पन है। पहले दो पद आमुख हैं, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। दाऊद हमारे विचारों को सर्वोच्च ऊंचाई पर ले जाता है। इस भजन का उपसंहार अंतिम दो पद हैं। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आंधी अपनी पूर्ण प्रचंडता पर है, परंतु यहोवा नियंत्रण किए हुए है और वह जीवन की आंधियों में भी नियंत्रण अपने ही हाथों में रखता है। मेरे मित्रों, इस भजन पर विस्तार पूर्वक मनन करने से पूर्व मैं इसके विषय वस्तु पर भी दो शब्द कहना चाहता हूँ, अर्थात पद 3-10 पर। 7 बार परमेश्वर की वाणी का उल्लेख है। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है आदि। इस भजन का विन्यास देखिए, यह दाऊद का भजन है। वह एक बाहर रहने वाला मनुष्य था, वह कार्यालय में बैठा रहने वाला व्यक्ति नहीं था। जी हाँ, वह सिंहासन से बंधा रहने वाला व्यक्ति नहीं था, तथापि इस आंधी के समय वह बाहर नहीं था। वह यरूशलेम में था, एक अति सुंदर नगर। दाऊद अपने देवदार के भवन में रह रहा था, यह सबसे ऊंचा स्थान था। वहां से वह संपूर्ण दृश्य देख सकता था, वह उत्तर पूर्व दिशा में बादलों का उठना देख सकता था और आंधी के आगमन को भी भांप सकता था। वहां का भौगोलिक दृश्य आप नक्शे में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पश्चिम में भूमध्य सागर है, उत्तर में लबानोन और विपरीत लबानोन के पर्वत हैं, वह हाफा में कर्मेल पर्वत और हर्मन पर्वत हैं, पूर्व में गलील सागर है, एस्ड्रोलोन की घाटी, यर्दन नदी और मृत सागर हैं। सामरिया की ओर उत्तर में हबाल और ग्रीजिम पर्वत हैं। यरूशलेम के उत्तर में बेतेल, आई नगर, अनातोत और यरूशलेम के पश्चिम में याफा, पूर्व में यरीहो, दक्षिण में यहूदा का भयानक जंगल। दाऊद और आमोस उस जंगल में निर्वाह करना चाहते थे। अपने महल से जो सियोन पर्वत पर था, दाऊद यरूशलेम का सर्वोच्च स्थान, वहां से दाऊद इस दृश्य को देख सकता था। तो मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और भजन संहिता 29 उसके 1-2 पद को देखते हैं। लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। ध्यान दें, यह भजन सर्वशक्तिमान को संबोधित है। मैं विषव हॉर्न से सहमत हूँ कि भविष्यद्वक्ता स्वयं को पृथ्वी के शूरवीरों द्वारा संबोधित करता है। उनसे कहता है कि वे उसका महिमान्वन करें और मसीह के राज के अधीन समर्पण कर दें। आइए हम देखें विषय वस्तु। अब भजन का मुख्य विषय आरंभ होता है। संपूर्ण प्रदेश में आंधी का वातावरण है। यहाँ पर 3 पद हैं। भजन संहिता 29 उसके 3-4 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है, यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान दें कि यह आंधी का आरंभ है। दूर उत्तर पश्चिम में गर्जन और बिजली की चमक है, आंधी उठ रही है और यरूशलेम की ओर बढ़ रही है। गर्जन यहोवा की वाणी है। दाऊद अपने महल से आंधी उठती देख रहा है, बादल काले और आवेशपूर्ण दिखाई दे रहे हैं, सूर्य धीरे धीरे छिप रहा है और दिन में अंधकार छा गया है, हल्की हल्की गर्जन और बिजली की रेखाएं दिख रही हैं। यह गर्मी की वर्षा नहीं है और न ही यह कोई साधारण आंधी है, यह एक प्रकार से बवंडर है। भूमध्य सागर के तट पर आंधी उठती है, लहरें तट पर ऐसी टकरा रही हैं जैसे तोप चल रही हो, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं और आंधी प्रदेश में प्रवेश करती है। आप उसका उत्तर से दक्षिण गमन देख सकते हैं। उसके चलन को देख सकते हैं। यरूशलेम भी नहीं बचेगा, आंधी अधिकाधिक निकट आती जा रही है। यहोवा की वाणी प्रभावशाली है। मेरे प्रियो, अब आप गर्जन सुन सकते हैं, गर्जन से सब कुछ कांप उठता है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है, वह भय उत्पन्न करती है। भजन संहिता 29:5 में लिखा है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। गर्जन के कारण लबानोन कांप जाता है, बिजली देवदारों को तोड़ डालती है, हरमन पर्वत ऐसे हिल जाता है जैसे कुत्ते को देख खरगोश, यरूशलेम के निकट आंधी अपने विभव और अपने भय उत्पादक रूप में आती है। गर्जन और बिजली की चमक के साथ लय मिलाकर आंधी चल रही है और पर्वतों से होती हुई और भी निकट आती जा रही है। भजन संहिता 29:6-7 पद में लिखा है, वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और शिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग के लपटों को चीरती है। मेरे प्रियो, लिखा है कि यहोवा की आग लपटों को चीरती है। बिजली चमकती हुई यरूशलेम के निकट आ गई है और युद्ध की तोपों की नाई गरजती है। आंधी अपने पूर्व वेग में है। यरूशलेम की सड़कें सुनसान हो गई है, द्वार बंद है, नगर में मौन व्याप्त है। केवल एक कुत्ता किद्रोन घाटी में भौंक रहा है। अकस्मात ही घोर वर्षा होने लगती है और प्रचंड वायु यरूशलेम की दीवारें हिला देती है। एक फाटक खुलकर टकराता है और बहुत आवाज कर रहा है। दाऊद ने ऐसा दृश्य पहले कभी भी नहीं देखा। वह धीरज धरकर यहोवा की वाणी सुनने की प्रतीक्षा करता है। भजन संहिता 29:8 पद में लिखा है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कांपाता है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, अब दाऊद आंधी को थमते और वर्षा को रुकते देखता है। हवा रुक जाती है, आंधी थम गई है और घरों के द्वार खुल गए हैं। आंधी यरूशलेम से बढ़कर यहूदा के जंगलों में दक्षिण पश्चिम की ओर चली गई है। वहां कादेश है। शीघ्र ही सीनै के जंगल में आंधी आने वाली है। हवा में ताजगी है और दाऊद की द्रोन घाटी में पानी की गर्जन सुनता है। हम भजन संहिता 29:9 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, यहोवा की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। आंधी से भलाई उत्पन्न हुई, पशु भयभीत थे, गर्भधारी पशुओं को अब पीड़ा नहीं थी। आंधी के कारण कुछ लोग मंदिर गए, वे जो बहुत समय से वहां नहीं गए थे, वे परमेश्वर का नाम लेने के लिए मंदिर गए थे। आंधी थम गई थी, वह दक्षिण में विलोप हो गई थी। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं आखिरी क्षेत्र में उपसंहार। भजन संहिता 29:10 पद में लिखा है, जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। परमेश्वर इस आंधी पर उसी प्रकार विराजमान था जिस प्रकार वह जल प्रलय पर विराजमान था। भजन संहिता 29:11 में लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आंधी में परमेश्वर का महान प्रताप उपस्थित था। वही तो आंधी में बल प्रदान करता है। परमेश्वर जीवन की आंधी में हमें बल एवं क्षमता प्रदान करता है और उसके बाद आई शांति का बोध करने में सहायता करता है। जी हाँ, आंधी अपने संपूर्ण वेग से चले तो भी नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में ही रहता है। वह जीवन की प्रत्येक आंधी को अपने वश में रखता है और अपनी प्रजा को शांति देकर धन्य करता है। इसलिए यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी की बवंडर है, आंधी है, चिंता है, परेशानी है, इस बात को जाने कि शांति का राजकुमार आपको अपने नियंत्रण में रखता है और वह आपको इससे अवश्य ही छुटकारा देगा। मेरे मित्रों, भजनों के अध्ययन में हमने देखा है कि इसराइल के लिए भविष्य में महाक्लेश प्रतीक्षारत है, इंतजार में है। उनके लिए मगिदोन तैयार हो रही है। उत्तर दिशा से शत्रु आकर उन्हें घेरेगा, परंतु आंधी में परमेश्वर है। वही नियंत्रण करता है। इसराइल के लिए यह एक अद्भुत संदेश है। इस भजन में हमारे लिए भी संदेश है, हम नई सृष्टि हैं, पुरानी नहीं, हम अंतिम आदम के हैं। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। यही कारण है कि मैं सप्त का दिन नहीं मानता, क्योंकि वह पुरानी बात है, पुरानी सृष्टि है। आप एक प्रश्न सुनेंगे, सप्त का दिन कब बदला था? यह तो कभी बदला ही नहीं था। बदले तो हम हैं और मसीह यीशु से जुड़ गए हैं। हमारा आराधना दिवस सप्ताह का पहला दिन है, पुनरुत्थान का दिन। आदम को सृष्टि पर प्रभुता दी गई थी, परंतु उसने उसे खो दिया। मसीह ने उसे पुनः स्थापित किया। पुरानी सृष्टि हमें एक नमूना, एक उदाहरण देता है और यहाँ हमारे लिए एक संदेश है। मेरे मित्रों, नए सृष्टि के जीवन में भी आंधियां चलती हैं, आत्मिक आंधियां जो हमें नष्ट करना चाहती हैं। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप निश्चय ही आंधियां झेल चुके हैं, या आप इस समय भी आंधी में फंसे हुए हैं। अंतिम आदम प्रभु यीशु आंधी का स्वामी है। उसने स्वयं ही आंधियों का सामना किया है, अपने शिष्यों के साथ आंधी का सामना किया है। वह अपने शिष्यों के साथ गलील सागर में नाव पर जा रहा था, तब बड़ी आंधी उठी, जिसे हम मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके 37 से 40 पद में पाते हैं। तब बड़ी आंधी उठी और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में कहने लगे, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? मेरे मित्रों, उस घटना में तो प्रभु यीशु ने आंधी को थमा दिया था, परंतु वह सदैव ऐसा नहीं करता है। कभी कभी वह हमारे कान में कहता है, हम पार लगेंगे। यही महत्वपूर्ण है। मैं आज आंधी में फंसे अनेक जनों के बारे में सोचता हूँ। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में एक माता ने अपना पुत्र युद्ध में खो दिया है। वह हमारा रेडियो कार्यक्रम सुनती है। उसने उस बर्फ में भी मुझे लिखा कि हमारी वचन की शिक्षा उसे दुख में पार लगा रही है। वह आंधी में फंसी है, परंतु परमेश्वर उसे संभाल रहा है। एक दिन वह आंधी थम जाएगी। मेरे प्रिय मित्र, मैं एक और परिवार को जानता हूं जो आंधी में जूझ रही है। मुझे एक दलाल ने लिखा, यदि यीशु ने उसे सहारा न दिया होता तो वह पागल हो जाता। एक बार मैं भी आंधी में फंस गया था और परमेश्वर का धन्यवाद किया कि मैं इस आंधी तूफान और वर्षा में भी बचकर आगे आ गया। जी हाँ, जब मैं अपने गंतव्य पर पहुंचा तो आंधी थम चुकी थी और चांद चमक रहा था, तो अति सुंदर दिखाई दे रहा था। क्या आप आंधी में फंसे हैं? आपको दो बातें स्मरण रखना है, आंधी अवश्य थम जाएगी और प्रभु यीशु पार लगाएगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 29 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 30 में देखेंगे, जिसका विषय है रोग मुक्ति के लिए हालेलुया। यह भजन दाऊद के भवन के समर्पण का गीत है और यह भजन स्तुति और आराधना का गीत है। जीवन की आंधी जब थम जाती है तब आत्मा स्तुति का गीत गाती है। बाइबल के विद्वानों ने सदैव यही शिक्षा दी है कि यह भजन दाऊद ने तब गाया था जब वह वाचा का संदूक यरूशलेम में लाया और उसे मिलाप वाले तंबू में रखा। परंतु अन्य विचारकों के अनुसार यह भजन अरौना के खलिहान के समर्पण का भजन है, क्योंकि वह परमेश्वर के भवन निर्माण के लिए नियुक्त किया गया है। तथापि कुछ का मानना यह है कि यह भविष्यवाणी संबंधित है और उसके भवन निर्माण की परमेश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञा की आभार व्यक्ति में दाऊद का स्तुति गान है, जिसे हम दूसरा शामुएल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 11 पद में पाते हैं। परंतु यह एक अति रोचक बात है कि आज यह भजन यहूदी पर्व चनुका अर्थात समर्पण के पर्व पर गाया जाता है। यह पर्व मकाबियों के युग में आरंभ हुआ था। आइए हम भजन संहिता 30 उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। लिखा है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। मेरे प्रियो यह मेरा वर अन्य अनेकों का विश्वास है कि दाऊद एक बार हिजकिया की नाई बहुत बीमार हो गया था परंतु परमेश्वर ने उसे रोग मुक्त किया था। हमारे पास उसके रोग का विवरण तो नहीं है परंतु इन पदों से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। मुझे यह भजन सुहाता है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे भी रोग से चंगाई दी है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हमें भी भजन तैयार करके उसे बीमारी से चंगाई का भजन नाम देना चाहिए जो उन सब के लिए हो जो इस दैत्य बीमारी से ईश्वरीय मुक्ति को पा चुके हैं। मेरे प्रियो हम भजन संहिता 30 उसके 3 पद में पढ़ते हैं, हे यहोवा तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता परंतु मैं इस भजन का उच्चारण कर सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए इसका महान अर्थ है। हो सकता है आपके लिए भी हो। भजन संहिता 30 उसके 4 में लिखा है, हे यहोवा के भक्तों उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। जी हाँ, जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद हम करते हैं। परमेश्वर ने मुझे इसलिए चंगाई नहीं दी कि मैं उसका विशेष प्रिय जन हूँ। उसने मुझे इसलिए चंगाई नहीं दी कि मैं एक बाइबल शिक्षक हूँ। उसने मुझे इसलिए चंगा किया कि वह पवित्र परमेश्वर है और पवित्रता बनाए रखता है। वह मेरे पापों को समझता है और अनुग्रह द्वारा मेरा उद्धार कर दिया है। उसने अपना मानक लेश मात्र भी कम नहीं किया है। जी हाँ, मैं फिर हल्लेलुया कहूंगा कि उसने मुझे चंगा किया। मैं अपने इस महान डॉक्टर की स्तुति करता हूँ। मुझे किसी चंगाई देने वाले किसी महान प्रचारक स्त्री या पुरुष की स्तुति नहीं करना है। मैं ऐसे किसी मनुष्य के पास नहीं गया, मैं सीधा ही उस महान डॉक्टर के पास गया जो मेरा परमेश्वर है। ओह मेरे मित्रों, यदि आप रोगी हैं तो सबसे पहले इस महान डॉक्टर के पास जाएं। इसके पश्चात अपने डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि आपके डॉक्टर को बुद्धि और प्रवीणता वही देगा चाहे वह उसे माने या ना माने। और यह बात सच है कि वह पवित्र है। हमें आभारी होना है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है जो हमारे साथ अनुग्रह निभाता है। भजन संहिता 30 के 5 में लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। ध्यान दें, उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, आंधी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी आंधी चल रही है, बीमारी है, तकलीफें हैं, समाप्त हो जाएगी। परमेश्वर मुझे दंड दे तो भी उसका क्रोध क्षण भर का होता है। जिस प्रकार पिता अपने बच्चे को सुधारने के लिए दंड देता है, परमेश्वर भी मुझे और आपको सुधारता है। यह उसका क्रोध क्षण भर का है। परमेश्वर ने 2-3 बार मेरी भी ताड़ना की है। मेरा पिता मेरी ताड़ना करता है, अतः मैं ताड़ना का अभ्यस्त हूँ। मुझे मालूम है कि जब मैं 14 वर्ष का था मेरे पिता मुझे ताड़ना देते थे ताकि मैं एक सही रास्ते पर चलूं। आज मैं उस बात को स्मरण करता हूं और अपने पिता को धन्य कहता हूं कि उसकी ताड़ना की वजह से आज मैं प्रभु के करीब आ सका। हो सकता है कि आपके माता पिता आपके प्रियजन आपको ताड़ना देते हैं। आप इसे बुरा ना माने क्योंकि यह आपके लाभ के लिए है, आपके जीवन की सफलता के लिए है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसके करीब आएं। जी हाँ, मेरी ताड़ना करता आ रहा है। ताड़ना मन भावन नहीं होती है परंतु उसका क्रोध क्षण भर का होता है, उसका क्रोध बना नहीं रहता है। मेरे मित्रों, मैंने भी परमेश्वर से वही कहा जो दाऊद ने कहा था, हे प्रभु, मैं जीवित रहकर तेरे वचन की शिक्षा देना चाहता हूँ। स्वर्ग आने के बाद तो मैं तेरे साथ अनंत समय तक रहूंगा, अतः पृथ्वी पर मैं कुछ समय और रहना चाहता हूँ। दाऊद ऐसे ही प्रार्थना करता था। और यहाँ मैं दाऊद से संबंध में एकता का आभास पाता हूँ। मेरे मित्रों, आप अपने उपयुक्त भजन खोज पाएंगे। यह मेरा विश्वास है कि सबका अपना अपना भजन है। यह भजन मेरा है। भजन संहिता 30 उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। मेरे प्रियो, इस पद में जोड़ने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। दाऊद ने जो कहा वही मैं कहता हूँ और कहना चाहता हूँ, और मेरा विश्वास है कि आप भी यही कहना चाहते हैं। दाऊद का जीवन बदल गया था, उसे रोग मुक्त हो स्वास्थ्य मिला और विलाप से आनंद मिला, और उसने परमेश्वर की स्तुति की। आज मेरे लिए और आपके लिए भी यही एक संदेश है कि आइए हम परमेश्वर के निकटता में आए और इस बात को जाने की आंधियां टल जाएगी, क्षण भर का क्रोध हट जाएगा और मुझे और आपको चंगाइयां और आशीषें मिलेंगी। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही फिर से एक बार अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया है। कृपया परमेश्वर को धन्यवाद दे उन आशीषों के लिए, उन चंगाइयों के लिए, और उससे मांगे, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करें।
सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरी शान में, आवाज गूंज मेरी धरती और आसमान में। गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरी शान में, आवाज गूंज भी जानूना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानूना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा।